चर्चा का विषय है।
नमस्कार, चर्चा का विषय में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट के बारे में, देश में प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश रंजन और अदिति टंडन, आप दोनों का स्वागत है। तो जयप्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि ये जो एक देश में पाइपलाइन गैस का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है और ये एक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और इस कदम का आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा और ये नेटवर्क का विस्तार किस तरह से किया जाएगा?
सरकार ने जो फैसला किया है वो मौजूदा जो परिवेश है, जो पश्चिम एशिया के हालात हैं, उसके बाद जो एनर्जी सप्लाई को लेकर जो चिंताएं बनी हैं, उसको देखते हुए किया है। सरकार की तरफ से पिछले लगभग 10 दिनों से बताया जा रहा है कि पीएनजी कनेक्शन के पाइपलाइन जितने जगहों पे अभी हैं, वहां 1.5 करोड़ से 1.6 करोड़ घरों में कनेक्शन है, लेकिन इस पाइपलाइन के आसपास 60 लाख ऐसे घर हैं जहां पे दिए जा सकते हैं कनेक्शन, जहां के लोग ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। अब आप दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि देश में एलपीजी की समस्या है, आप सब भली बात ही समझ रहे हैं, सरकार भी मान रही है, सरकार के अधिकारी जो है रोज बोलते हैं कि एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति चिंताजनक है। दूसरी तरफ हमारे देश में पीएनजी है, पीएनजी की जो उत्पादन है उसमें हम बहुत हद तक जो है ज्यादातर जो पूरे 100% तो आंतरिक तौर पर नहीं करते, लेकिन फिर भी उसमें हमारी क्षमता ज्यादा है। तो अगर 60 लाख लोग भी एलपीजी छोड़कर पीएनजी ले तो उसपे एक जो एलपीजी आपूर्ति करने का जो दबाव सरकार पे और सरकारी तेल कंपनियों पे है वो कम होगा। तो उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया। वैसे ये आदेश कोई नया नहीं है, पुराना है, उसको फिर से सरकार ने लोगों को याद दिलाया है और राज्य सरकारों को भी याद दिलाया है कि पीएनजी पाइपलाइन को बिछाने को लेकर जो मंजूरियां होती हैं उसको तेजी से आप दें। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जिस क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन है वहां के लोगों को बाध्य तो नहीं कहा है, लेकिन वहां पे सरकार की तरफ से उनको सूचना दी जाएगी उन घरों में कि आपके आसपास पाइपलाइन है लेकिन आप नहीं ले रहे हो। ये सूचना देने का लगभग 3 महीने का वक्त दिया जाएगा कि वैसे लोग वो घर जो है हाउस होल्ड है वो पीएनजी कनेक्शन लें, यानी कि वो हर घर में हम मोटे तौर पर लगभग 2 एलपीजी सिलेंडर होता है, तो कम से कम वो बाहर आएगा और जहां पे पीएनजी कनेक्शन नहीं है वहां पे वो एलपीजी के सिलेंडर पहुंच जाएंगे। तो ये एक पूरी तौर पे ये व्यवस्था जो है वो अभी बनी है।
बिल्कुल, तो जाहिर है इससे एक तरह से जो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर दबाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा और एक पाइप का नेटवर्क पहुंचने से लोगों को भी सहूलत मिलेगी। तो आइए सुनते हैं संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऊर्जा संकट को लेकर क्या कुछ कहा।
एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है।
अदिति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने एक नया ऑर्डर लागू किया है पाइपलाइन बिछाने का, तो आपको क्या लगता है जो पाइपलाइन के लिए जमीन भी चाहिए होगी, तो राज्यों से वो कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहेगा और क्या जमीनी चुनौतियां आती है और उनसे किस तरह से पार पाया जा सकता है?
देखिए, बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं जहां पर जमीनी चुनौतियां इतनी नहीं हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है पीएनजी की पाइपलाइंस को ले करने में, पाइप नेचुरल गैस को एक्सपांड करने में, वो हाउसिंग सोसाइटीज, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज में रहने वाले लोगों की रेजिस्टेंस, हाई फीस होती है, फिर उसके बाद पाइपलाइन ले करना है तो डिग करना है, उसके बाद लंबा प्रोसेस होता है, फिर उसको रिस्टोर करना है, रिपेयर करना है, तो एक लंबा प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उसमें बहुत आते हैं। बहुत सारी स्टेट्स अभी अपने ज्यूरिस्डिक्शन में रहने वाले लोगों को इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। जैसा कि जयप्रकाश जी ने अभी आपको कहा कि ये जो ऑर्डर है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो नई है, जो सबको जाननी चाहिए, वो ये है कि जो पहले रेजिस्टेंस होती थी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज हैं बड़े बड़े, वहां तो हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पर अभी भी एलपीजी सिलेंडर्स लोग यूज कर रहे हैं। सरकार ने इस ऑर्डर के माध्यम से ये एक्चुअली क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आपको अब लेना होगा जहां जहां फिजिबिलिटी है। जहां फिजिबल नहीं है वहां ठीक है, वहां आप एलपीजी कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके जो ऑफिसर्स हैं सर्वे करने जाएंगे। अगर फिजिबिलिटी नहीं है तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि फलानी हाउसिंग सोसाइटी में फिजिबल नहीं है पाइपलाइन को ले करना, लेकिन जहां फिजिबल है बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी हुई हैं, और जहां हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं वो मान नहीं रही हैं लगाने के लिए, वहां अब सरकार ये ऑप्शन नहीं उनको दे रही कि वो रेजिस्टेंस कायम रखें। वहां ये कह रही हैं, सपोज आज एप्लीकेशन दी कि आपको लगवाना जरूरी है फलानी हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसके 3 दिन के भीतर आपको परमिशन देनी होगी पाइपलाइन ले करने की। अगर आप नहीं देंगे तो वो सिस्टम लागू हो जाएगा कि पब्लिक नोटिस देगा गैस डिस्ट्रीब्यूटर। पब्लिक नोटिस में आपके नाम पब्लिकली नहीं आएंगे हाउस होल्ड्स के, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास वो नाम रहेंगे। फिर 3 महीने के अंदर अंदर अगर परमिशन नहीं आई तो एक प्रावधान जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको जानना चाहिए वो ये है कि आप अपनी एलपीजी की सप्लाई खो सकते हैं। ये एक डेटरेंट क्रिएट किया है सरकार ने, क्योंकि ये जरूरी हो गया था। एलपीजी की सप्लाई हमारे देश में 60% इम्पोर्ट होती है, और ये सारी 60% गल्फ नेशन से होती है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, और कतर से ही 47% होती है। 60% का 47% हिस्सा कतर एनर्जी से आ रहा था, जिसपे अभी आपने देखा कि पीछे ईरान का एक अटैक हुआ, तो वो चरमराई हुई है व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कल जब संसद में अपना बयान दिया, पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, उन्होंने कोई वर्ड्स मिंस नहीं किए, उन्होंने सबको साफ साफ बताया कि इस युद्ध की चुनौतियां बहुत लंबे समय तक रहने वाली हैं। उन्होंने कोई दुविधा नहीं रखी इस बारे में, साफ साफ लोगों को कहा कि ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया में हम घुसने वाले हैं। इस वजह से हमने जैसे कोविड के वक्त 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया था, तो वही 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स अब दोबारा बनाए गए हैं इन्फ्लेशन को देखने के लिए, रोजमर्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसेंशियल गुड्स का देखने के लिए। और ये जो पीएनजी सप्लाई है ये बहुत महत्वपूर्ण रेवोल्यूशनरी कदम इसलिए है क्योंकि हमारी जो एलपीजी डिपेंडेंस है जिसके लिए हर जगह हाहाकार मची हुई है वो एकदम रिजॉल्व हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट कंज्यूमर अगर अप्लाई करेगा उसे 48 घंटे में कनेक्शन देना जरूरी है। एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा इस ऑर्डर के तहत, जहां सारा सेंट्रलाइज, जिसको कहते हैं ना, वन विंडो बना दी जाएगी सारे अप्रूवल्स के लिए। तो इससे क्या होगा, देश तैयार होगा पीएनजी पे शिफ्ट करने के लिए। एलपीजी पे जो प्रेशर है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है इस टाइम, वो ईज होगा, रिलीज होगा और थोड़ा आराम मिलेगा अर्थव्यवस्था को।
बिल्कुल, जाहिर है भले ही एक इमरजेंसी सिचुएशन हो लेकिन इसी बहाने देश में एक बड़ा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क भी तैयार हो जाएगा। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे पीएनजी वर्सेस एलपीजी अगर हम बात करें तो खर्च में कितना अंतर आता है, क्या पीएनजी लोगों के लिए किफायती भी रहेगी एलपीजी सिलेंडर?
नहीं, अभी तक जो बिलिंग है वो तो किफायती होती है। अगर जो सामान्य तौर पर जितना हम एलपीजी से जलाते हैं, जो यूज करते हैं, उसके मुकाबले पीएनजी यूज किया जाता है, तो मोटे तौर पर सरकारी तेल कंपनियों का एक अध्ययन भी आया था इस बारे में, और इसमें एक सरकार की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ परसेंटेज है जो बिलिंग जो है कम होती है। और दूसरी बात है, इसमें सरकार पे सब्सिडी का भी कोई बोझ नहीं होता और सरकारी कंपनियों को सब्सिडी का बोझ नहीं देना पड़ता। आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों में सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 52,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने एलपीजी लागत से कम मूल्य पे बेचा है। आपको मालूम यह है कि एलपीजी हम सिर्फ घरों में तो दे रहे हैं, लेकिन जो उज्ज्वला योजना है जिसके तहत गांव-गांव के घरों में हम कनेक्शन दे रहे हैं एलपीजी के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, वो सब्सिडी पे दे रहे हैं। तो उस सबका सब्सिडी का बोझ होता है जो पीएनजी में नहीं है। पीएनजी में जो है आपको कॉस्ट पे देना पड़ता है, और आपने जो सवाल पूछा कि वो लागत उसकी कम होती, लेकिन इससे जुड़ा एक और मुद्दा होता है, क्या देश में इतना पीएनजी है? देखिए, अगर सारे लोग अभी जाएं तो उतना पीएनजी हमारे पास नहीं है। सरकार की भी योजना है, अभी लगभग 4-5% घरों में पीएनजी का कनेक्शन है, और पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो टारगेट रखा है 2030 तक, वो लगभग 12-14% घरों में
पीएनजी
पहुंचाने का रखा हुआ है। तो सरकार भी पीएनजी की लिमिटेशन को समझ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इस तरह की जो जहां पे शहरों में और जो छोटे शहर है वहां पे जहां पे पीएनजी पाइपलाइन पहुंच गया है, और दूसरी तरफ हम जो एलपीजी का जो समस्या देख रहे हैं, तो उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जहां पे पाइपलाइन पहुंच गया है वहां पे पीएनजी लें, तो ये सभी के फायदे की बात होगी। ये सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए और देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए भी फायदे की बात होगी। इस हिसाब से सरकार सोच कर चल रही है,
और एक डाइवर्सिफिकेशन होगा तो जाहिर है एलपीजी के ऊपर जो अकेले बोझ पड़ रहा है वो पीएनजी से भी बढ़ेगा।
जी, सरकार की एक जो नीति भी है कि हमें देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी बढ़ानी है। अभी देश की पूरी इकोनॉमी में 6% लगभग गैस की हिस्सेदारी है, उसे बढ़ाकर सरकार 15% करना चाहती है 2030 तक। वो अभी शायद कई लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी दूर की बात है, लेकिन इसी तरह से हम जो जब कदम उठाएंगे तभी होगा। आपको आज भी सरकार की तरफ से बताया गया कि 300 से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में पीएनजी कनेक्शन बिछाने की योजना पे काम चल रहा है, तो वहां पे सिर्फ घरेलू पे ही नहीं बल्कि वहां के जो कमर्शियल यूजेज वाले जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वहां पे भी पीएनजी कनेक्शन अगर पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा बोझ सरकार पे या जो एलपीजी सप्लाई करने का जो हमें बर्डन उठाना पड़ता है उसमें कमी होगी। जिससे अदिति जी ने बहुत सही बताया कि हम गल्फ पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एलपीजी खरीद चुके हैं। अगले कुछ दिनों में उनके जहाज भी अब भारतीय तट पे पहुंचेंगे। एलपीजी इनफैक्ट कई देशों में है जहां से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उनकी ढुलाई की लागत ज्यादा होती है गल्फ के मुकाबले, तो दूसरे देशों से अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से लेना उतना फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए भी इन सब पूरे इकोनॉमी को आप देखें तो पीएनजी में जाना सभी के फायदे की बात है।
बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इस ऊर्जा संकट के बीच देश में कई जगहों से एलपीजी की कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने और पीएनजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आइए सुनते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की इस पर एक खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर कोई खासी दिक्कत नहीं हो रही है, हालांकि लोगों ने पैनिक बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शुरुआत में कुछ समस्या जरूर सामने आई थी। विशेष तौर पर रीफिल करने वाले सिलेंडर को लेकर शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं थी। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में 12 मार्च से अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई है। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 FIR दर्ज की गई, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य 152 व्यक्तियों पर भी मुकदमे दर्ज हुए। कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई। शासन स्तर से 12 मार्च 2026 को जारी निर्देशों के तहत मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदेश के 4,108 एलपीजी वितरकों के यहां बुकिंग के अनुरूप उपभोक्ताओं को गैस रीफिल की डिलीवरी सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्तमान में सभी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार द्वारा भी सहयोग करते हुए 23 मार्च 2026 से वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे बाजार में आपूर्ति और अधिक सुदृढ़ हुई है। जिला आपूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी फील्ड में हैं और स्थिति की सतत निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान और समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इसके साथ ही होम कंट्रोल रूम में भी खाद्य और रसद विभाग के अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश के सभी जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, जो लगातार सक्रिय हैं। साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी फील्ड में लगातार भ्रमण कर उपभोक्ताओं को एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश में एलपीजी की जगह तेजी से पीएनजी कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसका काम बहुत तेजी से हो रहा है। गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एच.के. गर्ग ने मंडला आयुक्त एस. राजलिंगम और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के साथ में ये जानकारी दी कि इस समय शहर के करीब 69,485 रसोई घरों में पीएनजी गैस की सप्लाई हो रही है, जबकि 1.23 लाख से ज्यादा घरों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। प्रशासन और गेल मिलकर रोजाना करीब 130 घरों को एलपीजी से पीएनजी में बदल रहे हैं। बीएलडब्ल्यू, बीएचयू, सुंदरपुर, चितईपुर, पांडेपुर, शिवपुर, सारनाथ जैसे कई इलाकों में ये सुविधा पहुंच चुकी है। प्रशासन ने अब कैंप लगाकर कनेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
अदिति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कई जगहों पर इस संकट के बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि नहीं एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि नहीं कल से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो लोग पेट्रोल पंप पे लाइनें लगाने लगे हैं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि कोविड के जैसा लॉकडाउन लग जाएगा। क्या आपको सरकार के जरिए किसी तरह की ऐसी बात के संकेत मिले हैं, या आपका कुछ अनुभव ऐसा कहता है कि ऐसी कोई परिस्थिति होने जा रही है कि एकदम आपात स्थिति बन जाएगी?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है। अभी कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य रखा, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ तरीके से यह कहा कि जहां तक क्रूड ऑयल की बात है, उसमें अभी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है और अभी हम इस स्थिति में हैं कि हम कांस्टेंट डिलीवरी ऑफ क्रूड कर सकें लोगों को। ये उन्होंने कल अपने वक्तव्य में कहा, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती हुई दिख रही। दूसरा जो एक अच्छी बात हमें कल पता लगी प्रधानमंत्री के वक्तव्य से, वो ये थी कि भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का व्यवस्था किया हुआ है। 53 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था हमारे यहाँ हुई हुई है, 3 लोकेशंस पे रिजर्व्स हैं, और अभी ये अटेम्प्ट चल रहा है कि उसको 65 लाख मीट्रिक टन तक ले जाया जाए। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ये हमें 10 दिन तक किसी भी आपातकाल की स्थिति में सपोर्ट कर सकता है, तो ये प्रेशर है सरकार पे। अभी सब ठीक है, लेकिन बार बार सरकार ये जो रोज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन हुआ है जिसमें 3 बहुत सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं मंत्रालयों के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, शिपिंग मिनिस्ट्री से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, रोज आके अफवाहों को एड्रेस करते हैं ताकि कोई पैनिक की स्थिति ना हो। सुजाता शर्मा जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम में, वो रोज ये आके बताती हैं। आज भी उन्होंने यही कहा है कि कहीं भी किसी भी रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट की संभावना भी नहीं है, ना कोई स्थिति है अभी, तो अभी पैनिक करने की कोई पोजीशन नहीं है। वो ये भी रोज कहते हैं कि एलपीजी सप्लाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन अभी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भारत सरकार ने प्रायोरिटी तय की है वो उसमें अभी बाधा नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त के लिए तैयारी करने के लिए कल ये जो पेट्रोलियम और पीएनजी पाइपलाइन का नई पाइपलाइन पॉलिसी लाई गई है ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए है कि अगर प्रोलॉन्ग होता है वॉर तो आप कब तक एलपीजी पर निर्भर रहेंगे। तो एटलीस्ट जैसा कि जयप्रकाश जी ने सही कहा कि 60 लाख का एवरेज आपका रिक्वायरमेंट है सिलेंडर्स का डेली, अब उसमें से बहुत सारा अगर शिफ्ट हो जाए पीएनजी पर तो इमिडिएटली वो जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज प्रधानमंत्री ने कही लोगों को एश्योर करने के लिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ये जो एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन हुआ है इससे क्या होने वाला है कि आप अपने एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को भी सुविधा देने वाले हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से भी बेटर कोऑर्डिनेट, आपने अभी सवाल किया था कि स्टेट से कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, तो एक मैकेनिज्म बना दिया गया है, ये कोविड के वक्त था अब दोबारा बना दिया गया है, इसलिए नहीं कि कोई आपातकाल स्थिति है, इसलिए कि आपातकाल से बचा जा सके।
बिल्कुल, और उस व्यवस्था को हमने ट्राई भी किया है, टेस्ट भी किया है और वो खरी भी उतरी है परेशानियों से निपटने में।
देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो लर्निंग कोविड हमको देखे गया था वो ये देखे गया था होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सिटीजन्स अप्रोच, मतलब ये ऐसी लड़ाई है ना सरकार अकेले लड़ सकती है ना सिटीजन अकेले लड़ सकता है, ये हमारी सांझी लड़ाई है जिसके लिए हम दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन देना होगा। जैसे बार बार सरकार ने कहा है कि जो केरोसिन और फायरवुड पे शिफ्ट हो सकते हैं लोग, जैसे विलेजेस में या ढाबे हैं हिली एरियाज में, जो ढाबे हैं वो क्विकली शिफ्ट हो गए, हिमाचल में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं फायरवुड और केरोसिन पे शिफ्ट हो गए हैं लोग। अब ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूवल्स देके कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्टरनेट फ्यूल्स को यूज करना शुरू कर दीजिए, और अब ये पीएनजी का ऑर्डर आ गया है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर सरकार लेके आई थी इन्हीं आपातकाल स्थिति से जूझने के लिए वो ये था कि पहले आपने कहा था कि जो कमर्शियल एलपीजी है वो 20% जो है वो दी जाएगी एवरेज कंजम्पशन जो है 6 महीने की कमर्शियल एंटिटीज को, उसको फिर बढ़ाकर 10% और ऐसे स्टेट्स को कहा गया है कि आपको तब और 10% दी जाएगी अगर आप एलपीजी से पीएनजी पे शिफ्ट फैसिलिटेट करते हैं। मार्च 21 को एक और ऑर्डर आया है जिसमें सरकार ने यह कहा है कि एक 20% और आपको दिया जाएगा, जिसका मतलब प्री वॉर स्थिति पे आप आ गए हैं, 50% कमर्शियल एलपीजी भी दे रही है सरकार, कंडीशनली दे रही है। जैसे अब ये जो 20% लास्ट ट्रांच अनाउंस हुआ है वो कैंटीन्स ढाबा, अब सब्सिडाइज कैंटीन्स होती हैं बहुत सारी जगहों में उनके लिए, जैसे बहुत सारी सरकारें चलाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स चलाती हैं, अटल कैंटीन्स दिल्ली में चलती हैं, ऐसी जगहों के लिए अब एक और 20% की एलपीजी की आपूर्ति की गई है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगाई गई है कि सारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ रजिस्टर होकर ये कहना होगा कि हम पीएनजी पे शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से इसमें इस बात का भी शायद है कि देश में कहीं ना कहीं जो पहले क्राइसिस वाला ऐसा लग रहा था जब पश्चिम एशिया वार की शुरुआत में लग रहा था, तो उससे थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है, तभी कमर्शियल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के अब छोड़ दिया गया है कि उनकी एजेंसियां दें और केस टू केस वाइज दें। पहले तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बंद ही किया जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि एलपीजी का जो आपूर्ति है या पीएनजी की वो भी थोड़ी सी सुधरी है।
आपसे जानना चाहेंगे जयप्रकाश जी कि मौजूदा हालात क्या हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में पैनिक बुकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, इवन कई जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट भी क्रैश होनी शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों ने लगातार बुकिंग पर बुकिंग करनी शुरू कर दी थी, उन्हें लग रहा था कि ना जाने कल से गैस मिलेगी नहीं मिलेगी। अब हालात क्या है सरकार
की? सरकार की तरफ से जो बताया गया है डाटा के हिसाब से पैनिक बुकिंग लगभग मैक्सिमम 88 लाख गया था पर डे में, जो घटकर अभी लगभग 50 लाख के करीब आ गया है, तो ये भी जनता को भी थोड़ा सा एहसास हुआ है कि पैनिक बुकिंग करने की जरूरत जरूरत नहीं है। और आपने जो इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें भी पैनिक ही था कि आज भी हम कई जगहों से फोटो देख रहे थे, वीडियो इनफैक्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो राजस्थान में एक दो छोटे कस्बों का है और एक गुजरात के कुछ जगहों का है। वहां पे किसी ने स्थानीय स्तर पे जो अफवाह फैलती है, आप जानते हैं उसकी अलग एक पूरा अलग तरीके से होता है, वहां पे फैलता है किसी भी जगह पे, तो अफवाह फैला और पूरे शहर के लोग जो पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं गाड़ी से लेकर और घर के बर्तन वगैरह सब लेकर आ गए कि उसमें किया जाए, जबकि इस तरह की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट वो जिस पेट्रोल पंप पे दो चार पेट्रोल पंप पे लोग पहुंचे हैं उनके पास इतना पेट्रोल था, पर्याप्त था, क्योंकि सभी को दे रहे थे, किसी को भगा नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह के वाहन लेकर या ड्रम लेकर जा रहे थे वो सबको दे रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था कि वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है उनके पास पेट्रोल या डीजल की। फिर भी अफवाह फैल गया, धीरे धीरे प्रशासन ने उन पर शायद काबू पाया है, अभी हम लोग देख रहे थे। तो ये जो पूरा जो है पैनिक की जो आपने बात कही ना, ये पैनिक फैलने वाली बात है, तो इस पर सबको जनता को ध्यान देना होगा जो इसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि पैनिक न फैले सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर भी विश्वास करना चाहिए।
ऊर्जा की जरूरतों को लेकर के देश में उपलब्धता कितनी है इसके बारे में आज जो अंतर मंत्रालयीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने क्या कहा, आइए उन्हें सुनते हैं।
लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं, इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं, इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहां पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92% बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है।
अदिति जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक मौजूदा संकट है उसमें रोज नए नए बयान आ रहे हैं, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात करें या ईरान की तरफ से बात करें, इसराइल की तरफ से भी बात करें, सो आज का संकट ये आपको कहां जाता दिख रहा है, कितना और गहराता दिख रहा है या कहीं थमता नजर आ रहा है?
देखिए, ये सवाल से तो सारा विश्व जूझ रहा है अभी। इनफैक्ट सब यही जानना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया रात को कि ईरान के साथ एंगेज्ड है अमेरिका, कि डीएस्केलेशन का कोई संभावना पैदा हो सकती है। बीच में हमने ये भी सुना कि इंडिया में ही एक बयान आया ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया जो है उनका, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या है कि युद्ध की स्थिति में एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज होता है फॉग ऑफ वॉर, जिसमें तरह तरह के बयान चलते हैं और सिर्फ जो इमीडिएट स्टेक होल्डर्स हैं सच्चाई उनको पता होती है। पर यह क्लियर है कि अमेरिका एक एग्जिट रूट तो ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आप बयानों का अगर आंकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे कल उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज कही कि पीट हेग्जेट जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि आप ईरान को अटैक कर दीजिए, तो कहने का मतलब कि वो ये कहना चाह रहे थे कि ये मेरा यूनिलैटरल डिसीजन नहीं था कि मेरे तो एडवाइजर्स ऑन बोर्ड थे, लेकिन उनको ऑब्वियसली ईरान की रेजिलियंस और क्षमता का पता नहीं था। ये युद्ध कब टर्न करना शुरू किया, मुझे डिसाइसिव मोमेंट तब लगता है जब ईरान ने आई थिंक 2 दिन पहले 4000 किलोमीटर दूर यूएस और यूके के एक बेस पर अपनी मिसाइल डागी, तो तब विश्व को यह पता चला कि अभी तक ये मान्यता थी कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल्स की रेंज है, लेकिन जब उन्होंने दागी तो अगर वो 4000 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है, जिसके बाद फिर आंकलन शुरू हुआ। फिर ईरान ने भी ये कहा कि हम यूएस की और भी फैसिलिटीज हैं गल्फ में, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड नेटवर्क है यूएस का उसको हिट करने की कैपेसिटी रखता है ईरान, जिसके बाद फिर ऐसा लगा कि यूएस थोड़ा सा बैकडाउन कर रहा है। मुझे ओवरऑल सिनारियो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ईज होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। और यह भी महत्वपूर्ण है, पहले एस जयशंकर जी ने मार्को रूबियो से बात की, उसके बाद प्रधानमंत्री की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई रात को, तो ये अच्छे संकेत हैं, इसका मतलब कुछ नया बात करने को है, तभी तो कोई बात करता है ना, अगर स्टेटस को होगा तब तो कोई बातचीत का मुद्दा नहीं होगा। और अब तरह तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ पीस टॉक शुरू होंगी, वो किस लोकेशन पे होंगी उस पर भी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आंकलन में कि थोड़ी सी स्थिति शायद इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है,
परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जयप्रकाश जी, अगर ये परिस्थितियां इसी तरह की बनी रहती हैं या एक समाधान निकल भी आता है तो क्या कहीं लगता है कि 8 से 10 दिन में 15 दिन में वस्तुस्थिति जो है पुरानी जगहों पर पहुंच जाएगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी जैसे थी एज यूजुअल? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या पेट्रोल डीजल के दामों पर भी आप असर देखते हैं, सीएनजी और पीएनजी एलपीजी की सबकी सप्लाई पर भी असर आएगा और दामों के बढ़ने की कहीं आशंका नजर आती है?
एक वैश्विक एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसको आप सभी कोई जानते हैं, उसके चार दिन पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनके सिंगापुर से बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए थे, एनर्जी के और सभी उनके इकोनॉमी के और ट्रेड के। उनका आकलन था कि उस दिन भी अगर वार खत्म हो जाए, मैं पांच दिन पहले की बात कर रहा हूं, तो जितने जहाज हैं होर्मुज और गल्फ के क्षेत्र में जितने जहाज फंसे हुए हैं उनको निकलने में महीनों लग सकते हैं। उन्होंने उनका आकलन था कि 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो आपने जो पूछा ना कि कितने समय लग सकता है, तो ये मेरा आकलन नहीं है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्विक एजेंसी का आकलन है कि इसमें आज भी युद्ध खत्म हो तो उसको 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अब दूसरी बात है कि जब 2 से 3 महीने का समय लगेगा तो जाहिर है कि आपूर्ति, जो वैश्विक आपूर्ति है एनर्जी को, उसको समान होने में भी समय लगेगा। तो पूरा जो भारत में के संदर्भ में देखा जाए या दुनिया के संदर्भ में देखा जाए कि क्रूड के प्राइस कब क्या इम्पैक्ट हो गया, जो आम जनता है उसके जेब पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि क्रूड के प्राइस किस लेवल पे बने रहते हैं।
अदिति जी, सरकार और जो तेल कंपनियां हैं वो आज के मौजूदा स्थिति में जो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं आम लोगों की, नई हालात सामान्य हो जाएंगे या ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, वहां वो कितनी कामयाब होती नजर आ रही हैं आपको, या लगता है कि कहीं कुछ और करने की ज्यादा जरूरत है?
देखिए, हम नेशनल कैपिटल में बैठे हैं इस वक्त और यहां कोई पैनिक की स्थिति ऐसे सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। हां, एलपीजी बुकिंग को लेकर चिंता थी। देखिए, जब से इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की डेली ब्रीफिंग शुरू हुई है, ये सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि आप इन्फॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट ही ना होने दीजिए, क्योंकि रूमर्स और फेक न्यूज और पैनिक वैक्यूम में पनपता है, उस वैक्यूम को रोज भरते रहिए। तो जब 3 विदेश मंत्रालय, शिपिंग और पेट्रोलियम मिनिस्टर के आला ऑफिसर्स आके रोज हमारी प्रेस की क्वेरीज को एड्रेस करते हैं और हमारे माध्यम से लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, तो उसका बहुत असर होता है। ये तभी से जब से आईएमजी की मीटिंग शुरू हुई है, ऑनलाइन बुकिंग्स ज्यादा बढ़ गई हैं एलपीजी की, और वो जो लाइनें लग रही थी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के बाहर वो कम होती हुई नजर आ रही है।
सरकार ने तो साफ कह दिया कि डिलीवरी आपके घर पे आएगी, बस आप ऑनलाइन बुक करिए। जयप्रकाश जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के इस्तेमाल की भी बात इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में कई बार सामने आई है। खुद सुजाता जी ने कहा कि नहीं, इंडक्शन या जो ऑप्शंस हैं लोग उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। तो देश में आपको क्या लगता है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की अगर बात की जाए तो उस मामले में हम कितने कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं?
ये आपने सही कहा, सरकार की तरफ से अपील की गई है, और सरकार के अपील करने से मेरे ख्याल से पहले से हम लोग शहरों में देख रहे हैं कि लोग कुछ न कुछ जो इंडक्शन कुकर या उस तरह के जो है उसका उपयोग बढ़ चुका है मेरे ख्याल से, और उसकी बिक्री भी बढ़ी है। रिपोर्ट लगातार हम लोग देख रहे हैं, कई जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पर से ये सब जो कुकर वगैरह है इलेक्ट्रिक से चलने वाली, उनकी कमी हो गई है। दूसरी तरफ अगर आपूर्ति की बात करें तो देश में अगर बिजली की बात आप करें, ओवरऑल बिजली आपूर्ति वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ये लगातार जो है अभी कोयला उत्पादन जो है हमारे संयंत्रों को जा रहा है वो बहुत ही अच्छा से उसकी जो प्रगति है अच्छी है, और उसमें जो सप्लाई है बहुत अच्छी बनी हुई है। इनफैक्ट सबसे जो देश में लगभग 73% जो खपत होती है बिजली वो कोयला आधारित संयंत्रों का है, और उनके पास अभी जो कोयला है वो पूरे हिस्टोरिकली अभी हाईएस्ट लेवल पे है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा जितना वैकल्पिक हम लोग शहरों में किया जाए या देश के बाकी हिस्सों में किया जाए तो अच्छी बात होगी, कि उतना ही एलपीजी एक तरह से देखिए तो एलपीजी कुछ भी है, आप किसी भी तरीके से उसका आपूर्ति करें, लेकिन बेसिकली उसको 60% को बाहर से भी लड़ना पड़ रहा है, तो उसको डॉलर भी देखना पड़ता है, डॉलर अगर ऊपर नीचे होता है वो हमारे पे बोझ पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर घर में बनी हुई बिजली से उत्पादन हम लोग इस्तेमाल करें तो उसका बेहतर फायदा होगा।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के अपने ही फायदे हैं, और जाहिर है वो इस परिस्थिति में कम से कम ऊर्जा संकट के दौर में लोगों को एक अलग तरह की राहत देने का काम करेंगे। तो आज की चर्चा से यह साफ है कि सरकार का नया पाइपलाइन ऑर्डर देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन साथ ही वैश्विक हालात, खासतौर पर ईरान से जुड़े तनाव ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अफवाहों से बचें, सही जानकारी पर भरोसा करें और ऊर्जा के स्मार्ट विकल्पों की ओर बढ़ें। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
चर्चा का विषय है।